मनुष्यात्मा में कोई न कोई अच्छाइयाँ अथवा बुराइयाँ होती हैं, लेकिन आज के समाज में सभी एक दूसरे की बुराइयाँ देखने के आदि हो गए हैं, जिसके कारण टेंशन व अशांति का प्रकोप फैला हुआ है। इन सभी से बाहर निकलने का रास्ता है अपने सर्व संबंध मन बुद्धि सहित उस प्यार के सागर परमात्मा से जुड़ें। भले ही आज ज्ञान विज्ञान ने हमें सुख सुविधाओं के अनेकों साधन दिए हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल हम कभी कभार नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें कई दुख मिलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे वही योगी पसंद है जो दोष दृष्टि रहित ज्ञान विज्ञान सहित मुझे चाहता है। तो उन्हें कैसे जाने, आइए देखते हैं 24वें एपिसोड में।
ओम शांति। हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। गीता ज्ञान मन को परम सुख का अनुभव कराता है। सचमुच यदि रोज सवेरे मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इस ज्ञान का थोड़ा समय भी श्रवण कर ले तो उसके जीवन में सुख ही सुख आ जाएं। ये जो आजकल के समाज में टेंशन बढ़ी हुई है, अशांति का प्रकोप है, समस्याओं के मानो तूफान चल रहे हैं, बाहर की गर्मी के साथ अंदर बहुत गर्मी हो गई है, इस सब से मनुष्य को मुक्ति मिल जाए। मैं पढ़ रहा था 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक कि एक योगी जो है वो उन सभी पुण्यों से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य को वेद शास्त्रों के द्वारा यज्ञ तप दान पुण्य करने से प्राप्त होते हैं। तो हमें योगी बनना है। योगी अर्थात परमात्मा से जुड़े हुए। योगी का अर्थ कोई सन्यासी नहीं, योगी का अर्थ कोई सब कुछ छोड़कर ध्यान में बैठने वाले नहीं। योगी अर्थात जिन्होंने अपना संबंध, अपनी मन बुद्धि का संबंध उस परम पिता जो प्राणेश्वर है, जो प्यार का सागर है, जो सुखदाता है, उससे जोड़ लिया हो। तो बहुत सुखद फीलिंग है गीता के द्वारा। देखिए पहले ही श्लोक में 9वें अध्याय के भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया है, हे मेरे दोष दृष्टि रहित भक्त, मैं तुम्हें पुनः इस विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं, विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात वो ज्ञान जो विज्ञान सम्मत है, जिसको साइंस के द्वारा प्रूव किया जा सकता है, जो साइंटिफिक है। ये तो सत्य है कि ज्ञान को कोई लेबोरेटरी में प्रयोग नहीं किया जाता, पर मनुष्य का जीवन भी एक सुंदर लेबोरेटरी है। जीवन की लेबोरेटरी में इस ज्ञान को यदि सिद्ध किया जाए, प्रमाणित किया जाए, तो ये विज्ञान सहित ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, ज्ञान सत्य तर्कों पर आधारित होता है, विवेक सम्मत होता है, केवल भावना प्रधान नहीं, केवल श्रद्धा या अंधश्रद्धा प्रधान नहीं, लेकिन ज्ञान वो चीज है जिसको बुद्धिमान लोग भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और भावनात्मक लोग भी बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जहां भावना और विवेक दोनों का संतुलन हो जाए, किसी मनुष्य के जीवन में भावना और विवेक दोनों आ जाए, तो उसका तो कहना ही क्या, उसका तो ज्ञान संपूर्ण विज्ञान बन जाता है, विज्ञान संपूर्ण ज्ञान बन जाता है, जो उसके जीवन में सुख शांति की सरिता बहाने लगता है। चौथे श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द भगवान ने बोल दिया कि मैं निराकार परमात्मा। बहुत सुंदर शब्द है। जैसे बर्फ में पानी समाया रहता है, बर्फ पानी से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही ये संसार मुझसे परिपूर्ण है। इस बात पर हम आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो भगवान ने बोला गीता में, देखिए भगवानुवाच शब्द है, श्री भगवान ने कहा। ये नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, श्री कृष्ण का नाम इसमें बाद में जोड़ दिया गया, भगवानोवाच श्री भगवान। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में तो स्पष्ट है कि मैं निराकार परमात्मा। सभी बुद्धिमान लोग विचार करें कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है मैं निराकार परमात्मा, क्या श्री कृष्ण या वो महाज्योति जो परम सत्ता है, जो श्री कृष्ण के भी ऊपर है, जो उसका भी परम पिता है, जो उसका भी रचयिता है, मालिक है। तो वास्तव में यहां हम ये बात कहना चाहते हैं कि गीता का ज्ञान ज्ञान सागर निराकार परमात्मा ने दिया था। बाद में राइटर्स ने इसको संवाद का रूप देकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप से समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण ही भगवान के रूप में माने और पूजे जाते थे। तो आचार्यों ने विचार किया कि यदि हम श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो सभी लोग गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको धारण करेंगे। परंतु बहुत स्पष्ट है कि बोलने वाला निराकार परमात्मा है। अब ये प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा बोलेगा कैसे? शरीर चाहिए बोलने के लिए, मुख चाहिए बोलने के लिए। तो हम पहले भी स्पष्ट कराए हैं चौथे अध्याय में, जहां ये बात थी कि जब जब धर्म की ग्लानी होती मैं आता हूं, तो हमने स्पष्ट किया है कैसे आता है। जहां यह भी श्लोक है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। लेकिन फिर से थोड़ा सा बता दें कि निराकार परमात्मा जो जन्म मरण से रहित है, जो अव्यक्त है, जो सदा निराकार है, अर्थात ज्योति स्वरूप है, उसको अखंड ज्योति महाज्योति भी कहते हैं, जिसको स्वयं प्रकाशमान भी कहा है गीता में कई जगह, वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बोलते हैं। जन्म नहीं लेते, वो प्रजापिता ब्रह्मा बन नहीं जाते, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। तो उस तन में दो आत्माओं का निवास होता है, एक ब्रह्मा की आत्मा स्वयं और दूसरा परमात्मा की आत्मा, क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा ही है पर सभी आत्माओं में सुप्रीम है। पांचवा श्लोक और भी महत्वपूर्ण है। चौथे श्लोक में एक बात कही है बहुत सुंदर, सभी भूत सभी आत्माएं संकल्प मात्र से मुझ में स्थित हैं। पांचवे श्लोक में फिर हो गया कि वास्तव में सभी भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, और हे अर्जुन मेरी योग माया को देख कि मैं भी उन सब में स्थित नहीं हूं। तो कहीं कहीं कहा है मैं परिपूर्ण हूं, जैसे बर्फ में जल रहता है, संसार में मैं परिपूर्ण हूं, यह संसार मुझसे परिपूर्ण है। और यहां पांचवे ही श्लोक में अगले श्लोक में कह दिया कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। चौथे श्लोक में ये बात बहुत अच्छी आ गई, सभी आत्माएं संकल्प मात्र से मुझ में स्थित हैं। इसका क्या अर्थ है? बहुत सिंपल से इसकी व्याख्या है, क्योंकि सभी मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं, सभी मनुष्यों के संकल्प परमात्मा के लिए रहते ही हैं कभी ना कभी, चाहे कोई नास्तिक भी हो वो भी कभी ना कभी परमात्मा भगवान जाने अनजाने भूले चूके उसको याद कर लेता है। तो सभी के संकल्प परमात्मा तक पहुंचते हैं, इसको ही कहा है संकल्प रूप से सभी मुझ में स्थित हैं। परमात्मा सबके दिल में स्थित है, अर्थात उसकी याद सबके दिल में स्थित है, और इसलिए कह दिया वास्तव में मेरी आत्मा सभी में स्थित नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली लिटरली मैं सबके अंदर नहीं हूं और न सब मेरे अंदर है, लेकिन ये एक भावनात्मक पक्ष है, इस पर हमें बहुत अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। तो संसार में जो एक मान्यता हो गई कि भगवान ही सब जगह है, वास्तव में सत्य मान्यता नहीं है। भगवान ने पुनः आकर भी ये बता दिया कि मैं तो परमधाम का वासी हूँ। परमधाम की चर्चा गीता में कई जगह आई है, पहले भी हम वो चर्चा कराए हैं और फिर आएगी तो फिर आपके समक्ष रखेंगे, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां परमात्मा का निवास स्थान है। मनुष्यों की ये भूल हो गई कि उन्होंने ब्रह्म लोक ब्रह्म एक ही समझ लिया, ब्रह्म परमात्मा का वाचक है और ब्रह्म लोक जहां परमात्मा निवास करते हैं, जहां आत्माओं का निवास स्थान है। तो दो शब्द हो गए ब्रह्म और ब्रह्म लोक। इस बारे में जरा भी कंफ्यूज होने की, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा हमारा पिता है और वही आकर हमें सत्य गीता ज्ञान देते हैं। उसके ही ज्ञान को वास्तव में विज्ञान सहित ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और विज्ञान। और हम ये कहेंगे कि परमात्म ज्ञान से ही विज्ञान भी आगे बढ़ा है, विज्ञान का भी आगे आविष्कार हुआ है। क्योंकि एक बहुत सुंदर सी चीज, बहुत सूक्ष्म सा सिद्धांत और फिलोसॉफी हम आपके सामने रखते हैं। परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं और योग सिखाते हैं, इन्हीं शब्दों को दूसरा एक शब्द भी दिया जाता है, साइलेंस पावर। अर्थात जब वो ऐसा योग सिखा देते हैं जिससे मनुष्य का मन साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल शांत, तब इस साइलेंट मन से निकली हुई तरंगे, वेव्स निकलती हैं हमारे मन से निरंतर, जिसके आधार से हमारे चारों ओर ओरा बनता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो हमारे चारों ओर निरंतर किरणें फैलती रहती हैं मन से। जैसा मनुष्य विचार करता है, जैसे उसके संकल्प होते हैं, वैसी तरंगे, वैसे वाइब्रेशंस उस मनुष्य से निरंतर चारों ओर प्रवाहित होते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य का मन साइलेंट हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस उस मनुष्य से चारों ओर फैलते हैं और ये वाइब्रेशंस विज्ञान को जन्म देते हैं, नए वैज्ञानिक आविष्कार कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक वैज्ञानिक को आप ले लीजिए, वो नया आविष्कार कैसे करेगा? पहले उसके मन में एक विचार आएगा, विचार ही आविष्कार को जन्म देगा। और वो विचार उसके मन में क्यों आएगा? इसके पीछे प्रेरणा होगी योगियों के साइलेंस पावर की। तो हमारी जो ये साइलेंस पावर है, ये वास्तव में साइंस से बहुत गहराई से जुड़ी रहती है। एक साइंटिस्ट भी तब बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है जब उसका मन शांत हो, साइलेंट हो। तो दोनों का ये बहुत गहरा संबंध है। इसलिए परमात्म ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द जोड़ दिया जाता है, दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे विज्ञान भी आगे बढ़ा है। बहुत सुंदर चर्चा भगवान ने की है इस सृष्टि रचना के बारे में। एक बहुत गहरा शब्द अगले ही श्लोकों में आ गया है, 9, 10, 11 में, मेरी सकाश से ही प्रकृति चराचर जगत का निर्माण करती है, मैं कल्प के आदि में सभी भूतों को उत्पन्न करता हूं और कल्प के अंत में सभी भूत पुनः मेरी प्रकृति में समा जाते हैं। हम बहुत सहज व्याख्या आपके समक्ष कर रहे हैं, शास्त्रीय भाषा है, आम लोग इसको जटिल मानकर छोड़ देते हैं और फिर पढ़ते ही नहीं। लेकिन बहुत सरल सी बात है, ये संसार कैसे रचा जाता है, फिर विनाश होता है, तो सभी आत्माएं कहां पहुंच जाती हैं? तो जरा ध्यान दें, सतयुग से पहले सभी आत्माएं ब्रह्म लोक में स्थित रहती हैं। सभी आत्माओं का मूल वतन, असली घर, वो ब्रह्म लोक है, जो सूर्य चांद तारों गण के भी परे है। परमात्मा जब सतयुग की स्थापना कर देते हैं, तब वहां से आत्माओं को संसार में धीरे धीरे भेजते हैं। पहले कम आत्माएं वहां से संसार में आती हैं, फिर धीरे धीरे अनेक आत्माएं आती रहती हैं, जिससे संसार की जनसंख्या बढ़ती जाती है। कई लोग सोचते हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, शायद पशु पक्षियों की आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म ले रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य आत्माएं अलग हैं, परम धाम से वे इस सृष्टि पर आती रहती हैं। यहाँ एक शब्द भ्रम पैदा करने वाला होता है। भगवान ने कहा, कल्प के आदि में मैं सभी भूतों को रचता हूँ। वास्तव में आत्माएं रची नहीं जाती, आत्माएं तो अनादि अविनाशी हैं, रचे तो जाते हैं शरीर। तो परमात्मा की सकाश जब आत्माओं को मिलती है, तो आत्मा प्रकृति से मिलकर जीवन धारण करती है, शरीर धारण करती है, इसको परमात्मा की रचना कहा जाता है। तो आत्मा शरीर में आती है, प्रकृति से आत्मा का मिलन होता है और ये सब काम होता है परमात्म सकाश से। सकाश का यहां अर्थ है परमात्म वाइब्रेशंस, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की किरणें। और जैसे जैसे फिर संसार आगे बढ़ता है, सतयुग आगे बढ़ता है, तो ब्रह्मलोक से अनेक आत्माएं नीचे उतरती रहती हैं, देवताओं की जनसंख्या बढ़ती जाती है, त्रेता के अंत तक बहुत बढ़ जाती है, लगभग 33 करोड़ हो जाती है। इसलिए भारत में मान्यता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। वास्तव में सतयुग और त्रेता युग में मनुष्य देवता थे और त्रेता के अंत तक जनसंख्या 33 करोड़ होने से ये मान्यता प्रचलित हो गई। वहां से धीरे धीरे आत्माएं नीचे उतरती हैं, द्वापुर में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है और कलयुग में बहुत, और कलयुग के अंत तक प्राय सभी आत्माएं परम धाम से, ब्रह्मलोक से सृष्टि पर आ जाती हैं। और इस चक्र का एक नियम है कि जब अंतिम आत्मा परम धाम से नीचे आकर जन्म लेगी तो फर्स्ट आत्मा वापस चली जाएगी। परम धाम कभी खाली नहीं होगा, न ये संसार कभी खाली होगा, न ब्रह्मलोक कभी खाली होगा। अब पहली आत्मा है श्री कृष्ण की, नंबर वन आत्मा, और अंतिम आत्मा तो बहुत साधारण होती है, तो अंतिम आत्मा यहां से वापस जाएगी, अंतिम आत्मा परम धाम से नीचे आएगी और आत्मा जो सबसे पहले वहां से, वो यहां से वापस चली जाएगी। इसलिए कहा, और फिर सभी आत्माएं श्री कृष्ण की आत्मा के जाने के बाद सभी आत्माएं अपने घर वापस लौटने लगेंगी, क्योंकि कलयुग का विनाश हो जाएगा। तो इसको कहा है कि सभी आत्माएं मेरी प्रकृति में फिर से प्रवेश कर लेती हैं, समा जाती हैं। तो मेरी प्रकृति, हम समझते हैं इसका अर्थ यहाँ परम धाम से है कि परम धाम से मैं आत्माओं को नीचे भेजता हूँ और विनाश काल में उसके बाद सभी आत्माएं पुनः परम धाम में मेरे पास लौट आती हैं। तो ये बहुत सुंदर चक्र चलता है और यही चक्र फिर फिर रिपीट होता रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर कलयुग, कलयुग का विनाश, फिर सतयुग की स्थापना, और फिर इस तरह चक्र चलता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इस तरह ये चारों युगों का चक्र इस संसार में घूमता रहता है। परम धाम से निरंतर आत्माओं का आगमन इस सृष्टि पर होता रहता है। परम धाम से जब कोई आत्मा इस सृष्टि पर आती है तो संपूर्ण पवित्र होती है, सतोप्रधान होती है। अब भी कलयुग के अंत में जो आत्माएं ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर आती हैं, आ रही हैं, वो बहुत पवित्र हैं। इसलिए आप देखेंगे कलयुग में भी बहुत अच्छे लोग हमें मिल जाएंगे जो बिल्कुल सात्विक, जिनका खान पान, व्यवहार, आचार सब बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि ये तो मानो देवता हैं। तो ये आत्माएं अभी अभी परम धाम से उतरी हैं, अर्थात इनका ये पहला जन्म है। तो परमात्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या कर्तव्य होता है? क्या वो सारा समय इस संसार में अपना काम करते हैं, हम जो कर्म करते हैं उनका हमें फल देते हैं, क्या वो निरंतर इस सृष्टि से जुड़े रहते हैं? वास्तव में बहुत गुह्य बात है जो परमात्मा के द्वारा ही हमने जानी है। इस बात को कोई मनुष्य नहीं जान सकता, और वो ये है कि सतयुग और त्रेता में जब ये सृष्टि स्वर्ग रूप होती है तब परमात्मा को यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, वो ब्रह्मलोक में रहते हैं, मानो अपनी एक तल्लीन अवस्था में रहते हैं। द्वापर युग के बाद जैसे ही देवताओं का पतन होता है तो भक्ति प्रारंभ होती है, लोग भगवान को याद करते हैं और तब से उसका कार्य प्रारंभ होता है सृष्टि में। फिर से वो भक्तों को भक्ति का फल देता है। जो मनुष्य जिस जिस तरह की भक्ति करता है, जिससे ध्यान लगाता है, जिसमें भावना और श्रद्धा रखता है, उस अनुसार वो स्वयं आकर उसको फल दे देते हैं। परंतु एक बात जिस पर बहुत गहराई से सभी को ध्यान देना है कि क्या भगवान सभी के कर्मों को देख रहा है और फल देता है, कहीं कोर्ट लगता है, कोई धर्मराज जैसी चीज है, कहीं कोर्ट कचहरी लगती है जहां परमात्मा सभी का न्याय करता है। वास्तव में परमात्मा ने आकर अब बताया कि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वो उसके अंतर मन में समाते रहते हैं और तद अनुसार उसको ऑटोमेटिकली फल मिलता रहता है। ये आत्माओं का खेल, संसार का खेल मानो ये कंप्यूटराइज्ड है, जिसमें बहुत चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। परमात्मा तो केवल अंत में आकर स्थापना और विनाश का काम करते हैं। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि मैं ये सब कार्य उदासीन की भांति करता हूं, अनासक्त रहकर करता हूं, आसक्ति से मुक्त रहकर करता हूं, इसलिए मेरे जो ये कर्म हैं वो मुझे बांधते नहीं हैं। तो भगवान आते हैं और फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा रहित हैं, जो मुझे इस तन में स्थित होने पर नहीं पहचानते, बहुत अच्छे शब्द आए हैं, ऐसे लोग मुझे मनुष्य रूप में संसार में विचरण करता हुआ देख, संसार के उद्धार के लिए जब मैं इस संसार में इस तन में प्रवेश करता हूं, तो मनुष्य रूप में रहता हूं, तो मुझे न पहचानने के कारण मुझे साधारण मनुष्य समझकर ग्लानि भी करते हैं, ऐसों को भगवान ने मूढ़मति कहा। तो भगवान इस तन में, माना ब्रह्मा के तन में आते हैं, लेकिन तन के बंधन में नहीं रहते, लेकिन देखने में तो निराकार दिखाई नहीं देगा, देखने में तो उसका मनुष्य स्वरूप ही दिखाई देगा। तो ऐसा ही समय इस सृष्टि पर फिर से चल रहा है, जबकि परमात्मा परकाया प्रवेश होकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, कलियुगी संसार के विनाश का और सतयुग की स्थापना का। तो हमारे सामने विनाश काल खड़ा है, हम एक ऐसे समय पर आ पहुंचे हैं जबकि अनेक साधनों के द्वारा, एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब्स के द्वारा, प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा इस संसार का विनाश होगा और सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार सजा भोगकर वापिस ब्रह्मलोक में चली जाएंगी। परमात्मा अपना दिव्य कार्य इस समय सृष्टि पर कर रहा है, हमने उसको दिव्य कर्म करते हुए देखा है। वो वास्तव में ही बहुत निरहंकारी हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते, वो शो नहीं करते, बड़े गुप्त रूप से संसार को बदल कर चले जाते हैं। तो यदि आप इस श्रेष्ठ मिलन का परम सौभाग्य प्राप्त करना चाहें तो परमात्मा को उनके ज्ञान के द्वारा पहचान कर ये परम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाकर उसमें गीता ज्ञान के अनेकानेक प्रयोग कर उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा जीवन ज्ञान विज्ञान से एक सुंदर लेबोरेटरी बन जाएगा, जिससे हमारा मूल्य किसी भी महर्षि अथवा महान आत्मा से श्रेष्ठ हो जाएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा फोन नंबर है 09414423863।
मंजिले सिर दूर नहीं सी,